وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ہجرت قریب ہے اب, تو اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ دعا کریں کہ میرا مدخل اور مخرج, داخل ہونے کی جگہ اور خارج ہونے کی جگہ صدق کے ساتھ ہو. صدق کا مطلب کیا, یعنی جو ظاہری باطنی طور پہ درست ہو, بہتر ہو, اچھا ہو. اور داخل ہونے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تھی؟ مدینہ. اور خارج ہونے کی؟ مکہ. یا اللہ یعنی مکہ میں مجھے بخیر و خوبی داخل کر دینا, وہاں کوئی ناگوار چیز, کوئی ایسی انسیڈنٹ نہ پیش آئے, کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسی ایکسیڈنٹ, کوئی ایسی بری چیز نہ پیش آئے, اور مکہ سے میرا نکلنا بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ واقعی پھر ہجرت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کر دی تھی, کہ پیچھے کافر ایسے تھے کہ یعنی بھیڑیوں کی طرح وہ بو سونگتے پھر رہے تھے کہ ہم کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے سیفلی نکال لیا, وہاں سے خیریت سے نکال لیا اور مدینہ پہنچ گئے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا زبردست استقبال ہوا, جیسے کوئی بادشاہوں کا ہوتا ہے. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, بھی دعا فرمائی کہ اللہ میرے لیے کوئی سلطان کر دینا, کوئی اقتدار, کوئی قوت, کوئی طاقت میری مددگار بنا دینا, یعنی جو میں وہاں پہ پہنچوں جو میرے مشن میں میری مددگار ہو. ایک تو دیکھیں مددگار دو طرح کے ہو سکتے, ایک تو مددگار وہ ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ خود ہی اس کے پاس کچھ نہیں ہے پاور, تو بیچارہ کتنی مدد کر سکے گا. ایک ہے کہ کوئی طاقت, کوئی قوت ساتھ مددگار ہو جائے, تو پھر تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے کام میں نا. تو اس لیے سلطان بھی چاہیے, قوت چاہیے, لیکن وہ قوت چاہیے جو مددگار بنے میری. اور یہ زبردست دعا ہے, اس لیے کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے سازگار ہے, ہر ایک کے لیے. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعا ہر مسلمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنی چاہیے, یعنی ہر مقصد میں. اس کے اندر دنیا کے جتنے بھی, وہاں پہ تو ہجرت کی بات کی گئی نا, آپ کہیں سے بھی نکلتے ہیں, چاہے گھر سے نکل رہے ہیں, چاہے آپ اور کہیں اپنا کوئی کاروبار کام شروع کرنے والے ہیں, کوئی جاب شروع کرنے والے ہیں, کہیں نئی جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں, کوئی کسی کی شادی ہے کسی بچی کی, وہ اپنے نیا گھر شروع کرنے والی ہے, اب اس وقت یہ دعا بہترین ہے. انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے جس گھر سے میں نکل رہی ہوں صدق کے ساتھ, اور جہاں پہ داخل ہوں گی وہاں پہ بھی صدق کے ساتھ داخل کرنا. اور آپ نے دیکھا حالانکہ نکلنا تو پہلے ہوتا ہے, داخل ہونا بعد میں ہوتا ہے, لیکن داخل ہونے کی بات پہلے آئی اور نکلنے کی بعد میں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی جگہ سے نکلتا ہے نا, سب سے زیادہ فکر کیا ہوتی ہے, اب جائیں گے کہاں, اب بنے گا کیا آگے. نکلنے سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے نا اگلی جگہ داخل ہونے کی. مثلا یہاں سے کہا جائے کہ بھئی آپ نے وہاں جانا ہے, تو یہاں سے نکلنے کی اتنی نہیں فکر ہوگی جتنی یہ ہوگی کہ وہ آگے ہمارا کیا بنے گا. تو اس لیے داخلے کی بات کو پہلے کیا کیا, اللہ اس میں صدق دینا, سچائی, رسپیکٹ کے ساتھ ہو وہ. تو اور قوت, زور, میرا حامی اور مددگار بنا دینا. آپ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں پھر کیسے مددگار بن گئے تھے, جو وہاں پہ اسٹیبلش تھے, وہ وہاں کی قوت تھے, ان کے ذریعے اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور حکومت بھی دے دی. تو ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں, یاد کر لیں, جدھر بھی داخل ہوں وہاں پہ یہ آپ آزما کے دیکھیے گا اس دعا کو. یہ دعا میں نے جتنے لوگوں کو بھی سکھائی ہے, ماشاء اللہ سب لوگوں نے اس کا بہت ہی اچھا بتایا کہ ہمیں بہت ہی اس کا فائدہ ہوا ہے, کسی ادارے میں ہے, کسی جگہ پہ بھی ہے. بلکہ آپ اپنے ہسبینڈس کو سکھا دیں یہ دعا, کیونکہ جابس پہ جو لوگ جاتے ہیں کاروبار میں ہیں, ان کے لیے بڑی زبردست ہے. وہ نئی جاب شروع کرنے لگے تب بھی, وہ روزانہ جاب پہ جاتے ہیں تو تب بھی, اللہ جب ظاہر ہے داخل ہو رہے ہیں اپنے آفس میں اس میں, تو اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے چائی کے ساتھ داخل کرنا اور صدق کے ساتھ ہو. یعنی صدق میں کیا آ جاتا ہے, خوبی, بھلائی, خیر, ساری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. تو ساری اپنی خیر مانگ لی, جو مطلب اندرونی بھی بیرونی بھی ہر طرح سے, अच्छाई है वो बस, तो वो मांग ली। तो खैरो खूबी है अल्लाह की रजा के साथ सब इसके अंदर आ गया। इतना कुछ आपने एक दुआ में मांग सकते हैं, तो इस दुआ को घर से निकलते वक्त भी आप मांग सकते हैं। ज़्यादा लंबी दुआ नहीं है, आप बस रब्बी अदखिलनी से स्टार्ट कर लें और सुल्तान अन्नसीरा तक। और इसके अंदर सिर्फ फिर दुनिया की नहीं है, दूसरा इसका माना अदखिलनी और अखरिजनी में आ गया कब्र भी, क्योंकि कब्र भी तो एक दाखिल होने की जगह है ना। अल्लाह ताला कि मेरा यहाँ पे दाखला जो मेरा कब्र का दाखला हो उस दिन, फिर मेरे नेक आमाल मेरे साथ हो, मेरी जगह को उसको रोशन कर देना। और फिर मैं वहाँ से जब मेरा मखरज हो, जब वहाँ से मैं निकलूँ वहाँ से, यानी कब निकलेंगे हशर में, तो उस दिन भी सच्चाई के साथ उठूँ, क्योंकि कुरान में है ना सच्चों को उस दिन उनका सच फायदा देगा। और तीसरा माना भी एक बयान किया जाता है इसके अंदर कि जन्नत में मेरा दाखला या अल्लाह खैर व खूबी के साथ हो जाए, भलाई के साथ हो जाए, उस जगह पे मुझे खैर के साथ इज्जत के साथ दाखिल कर देना। और अखरिजनी से फिर मुराद क्या होगी, यानी मीज़ान से और पुल सिरात से मुझे पार निकालना, और मीज़ाने जो हिसाब किताब है उसके साथ भी इज्जत के साथ इखराज हो मेरा, इज्जत के साथ मैं निकलूँ वहाँ से। तो ये सारी जगह होंगी, यानी आम मानों में भी हो गया और अब कब्र के लिए भी हो गया, जन्नत और आखरत यानी हशर के मराहिल के लिए भी हो गया, तो सारे इसमें हो गए ना माने। आप ये सुल्ताना नसीरा का ऐसे ही याद रखेंगे जैसे आप कहीं नए मुल्क में जाएं, तो वहाँ पे अगर आप ये सोच लें कि वो वहाँ के जो गवर्नर हैं या वो हैं उनकी गाड़ी आपको लेने आएंगी, वो आपके साथ साथ होंगे हर जगह, वो आपको सैर कराएंगे, वहाँ के वजीर वहाँ के वो, तो आपको कितनी तसल्ली हो जाती है ना, क्योंकि वो इतनी बड़ा जो अथॉरिटी है, हुकूमत है, जो जिनके पास पावर है, वो आपके मददगार बन गए सारी सैर वैर में, सब दिखाने में, सब जगह घुमाने में। तो जब इंसान हर जगह पे सुल्तान नसीरा मांग लेता है तो इतनी बड़ी आपके लिए मदद आ गई। और मजबूत दलील के मानों में भी आता है कि नहीं, मजबूत दलील को मेरा मददगार बना देना, मुझे दलील दे देना। वकुल जा अलहक वजहक अलबातिल, और कह दीजिए आ गया हक और मिट गया बातिल, बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने के लिए ही है, जायल होने के लिए ही है। यहाँ पे हक से मुराद क्या है, कुरान, कुरान आ चुका है, और बातिल जो इनके अपनी तरफ से ही बनाए हुए अकीदे और वो थे, वो सब बातिल हैं, बातिल मिट गया। ये उस वक्त कहा जा रहा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने मुश्किल हालात हैं, उस वक्त कहा जा रहा है कि बस फैसला हो चुका, अल्लाह के यहाँ तो फैसला हो चुका था ना, ये ही छाएगा जो हक है, और बातिल का पता भी नहीं चलेगा, मिट जाएगा, क्योंकि झूठ के लिए इस कायनात में कोई गुंजाइश नहीं है। और यही आयत वो है कि जब मक्का फतह हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला में दाखिल हुए, तो उसके गिर्द 360 बुतों के मुजस्मे थे, बुत रखे हुए थे। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमाते जा रहे थे और अपनी लकड़ी एक एक बुत के सीने पे मारते जा रहे थे। बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत है। तो ये इतनी पहले पेशीन गोई हो गई थी। और बातिल जहाँ पे भी है, जिस जमाने में भी हो, बातिल मिट जाने वाली चीज़ की कोई उसकी कोई बेस नहीं है ना, हक की बेस है। और दुनिया में जो कुछ अल्लाह के सिवा है वो सब बातिल है, ये सब अकीदे बातिल हैं जो तौहीद के सिवा हैं। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, और हम तो नाजिल करते हैं इस कुरान से जो शिफा है, रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। कुरान को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये शिफा है, हम नाजिल करते हैं इसमें से शिफा। पहले भी हम पढ़ चुके हैं सूरह यूनुस में, या युन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम शिफाउन लिमा फी सुदूर, ए ईमान वालों जो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई है, ये दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है। कैसे शिफा बनती है, ये रूहानी बीमारियों के लिए भी है और जिस्मानी के लिए भी है। रूहानी बीमारियों के लिए कैसे है, ये हसद कीने बुग्ज इन चीज़ों को ये मिटा देती है, ये कुरान मिटा देता है, ये कुरान निकाल देता है। शिर्क है, निफाक है, रियाकारियां हैं, दुश्मनियां हैं। अब आप देखें, जब से आप कुरान से जुड़े हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि इन चीज़ों में अगर कहीं हसद था, कहीं कीना था, कहीं किसी से कि लिए इल फीलिंग्स थी, कितनी हद तक, अगर पूरी नहीं भी ख़त्म हुई अभी तक, तो कितनी हद तक उसमें कमी आ गई है। ये आती है क्योंकि ये रूहानी बीमारियों को दूर करने वाला है और जिस्मानी बीमारियों को भी दूर करता है। और जैसे हम देखते हैं कितनी सारी बीमारियों के इलाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा को, सूरह फातिहा को शिफा फरमाया तमाम बीमारियों में। सूरह फातिहा का दम जो है ना, वो कसरत से करना चाहिए। सूरह फातिहा पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ अल्लाह से मांगी जाए अल्लाह ताला ता फरमाता है। फिर सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ के दम करना भी फ़ायदा देता है। और इसी तरह 3 दफ़ा सूरह इखलास और 3 दफ़ा माउज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के भी दम करना चाहिए। फिर जानकनी की तकलीफ के वक्त में भी माउज़तैन जो है, माउज़तैन जब मैं कहूँगी तो क्या है, फलक और नास, ठीक है? तो उस जब कोई फौत हो रहा हो, जानकनी की जो तकलीफ हो ना, उसमें भी मरीज पे ये दम करना चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल मौत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माउज़तैन पढ़ के दम कर रही थी। और नज़रे बद से बचने का भी इलाज इसमें है, जहरीले जानवर के काटे का भी इलाज इसमें है। जहरीले जानवर के काटे के इलाज की सूरत में क्या करना चाहिए, सूरह फातिहा पढ़ के दम करना चाहिए। ये बुखारी में है, आपको शायद की मक्खी काट जाए या सांप काटे या कोई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला महफूज रखे, किसी को काट जाए तो फिर ये दम करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिच्छू के काटने पर, स्कॉर्पियन होता है उसके काटने पर, उस जगह को नमक मिले पानी से धोया और सूरह काफिरून और माउज़तैन पढ़ के उस वक्त तक दम फरमाते रहे जब तक आराम नहीं आया। और ये मैंने शायद की मक्खी के काटने के ऊपर किया था, तो मेरा अपना तजर्बा है, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहीं दर्द है मुझे। और फिर इसी तरह जो दिल के मरीज़ हैं, मसलन दिल पे डिप्रेशन भी छा जाता है और ये होता है, ये तो उसकी रूहानी बीमारियाँ हो गई, लेकिन अगर दिल तेज़ धड़क रहा है या कुछ है, तो आप ये देखें अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रि इल्लाही तत्मईन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र जो है दिलों को इत्मीनान देता है, और कुरान पढ़ने वालों पे अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल होती है। तो बकसरत तिलावत करना, इसमें आप फिर सारा ही कुरान आ गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, दिल के ये डिप्रेशन और ये और दिल तेज़ी से जो धड़कता है या इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, उनके लिए आपको फ़ायदा देगा ये। फिर शैतानी वसवास से बचने का भी इसमें इलाज है, क्योंकि इसमें वो दुआएं हैं जो आपको शैतान के वसवास से, रब्बी औज़ुबिका मिन हमज़ाति शैयातिन व औज़ुबिका रब्बी अन यहज़ुरून, सूरह मोमिनून में। तो फिर ये भी इसी के अंदर है, इसी कुरान में। बुरे ख्वाब आए तब भी आपने ये दुआ इस तरह से पढ़नी है और औज़ुबिल्लाह भी पढ़नी है। जादू किसी के ऊपर हो जाए तब भी इसी कुरान के अंदर आयतें हैं और सूरतें हैं जो आपको जादू से शिफा देंगी। तो इसमें कितनी चीज़ों का इलाज है, कितनी बीमारियों का इलाज है। अमूमी बीमारियां तो जो भी हैं वो सूरह फातिहा और उसके अलावा दिल की ऐसी बीमारियां हैं तो पूरा कुरान ही है। तो आज तो हर घर में है ना, आप देखें जहनी बीमारी है, परेशानी है, जी बेकरारी रहती है, पता नहीं मुझे क्या रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, बस एंग्जाइटी है, ये है वो है, तो लोग उसके लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये कुरान पढ़ो, इसको ज़्यादा पढ़ो, अगर अभी पढ़ते भी हो, नहीं भी हम तो पहले ही पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा कर दो, ठीक है? इसी तरह रहमा, कुरान रहमा भी है, कुरान शिफा भी है, इसीलिए हमने अपना क्लास का नाम रहमा रखा कि ये रहमत है, कुरान रहमत है, पूरा का पूरा रहमत है। وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ। तो हर इंसान चाहता है मुझे रहमत मिले। लोग बल्कि अपने घरों में कुरान खानियां कराते हैं, जिनके घर में बरकत हो जाए, रहमत हो जाए, अल्लाह की रहमत हो। तो इससे नहीं होता, आप ये कुरान इटसेल्फ रहमत है। आप अगर रहमत चाहते हैं ना, और कौन नहीं चाहता, हर एक चाहता है, दुनिया में भी चाहता है, आखिरत में भी चाहता है, बरजख में भी चाहता है, और हशर के मैदान में भी चाहता है, और जन्नत तो है ही अल्लाह की रहमत। तो अगर रहमत चाहते हैं तो इस कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें और इसको ना कभी छोड़ें। कब तक चाहते हैं? अगर मरते दम तक चाहते हैं तो मरते दम तक कनेक्शन रहना चाहिए, ये नहीं कि ये कोर्स खत्म कर लिया हमने तो अब कोर्स खत्म कर ले तो अब तो बस ये जैसे कोई FA BA का आपने डिग्री ले ली तो सर्टिफिकेट लेके तो अब हम जा रहे हैं, सर्टिफिकेट तो मिल गया। नहीं, रहमत क्या बस 2-3 साल तक आपको चाहिए या हमेशा रहमत चाहिए अपनी जिंदगी में? शिफा क्या हमेशा चाहिए या थोड़े दिन के लिए चाहिए? बीमारियां तो आ ही जाएंगी, हम ऐसी जगह रहते हैं दुनिया में जहां पे ये रूहानी बीमारियां, ये बुग्ज, कीने, हर हसद, ये चीजें बार बार आपको अटैक करेंगी। तो शिफा हमेशा चाहिए। अल्लाह तेरी रहमत से हम कभी कैसे किफायत कर सकते हैं कि हमें काफी हो गई बस इतनी? हमें तो हमेशा चाहिए। अल्लाह ताला ने इसको अपनी रस्सी फरमाया है कि या कासिमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ये अल्लाह की रहमत है। तो इस रहमत को छोड़ते हो और इसको कहते हो कि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है इस रहमत को लेने का, बस लोग आगे बढ़ जाए हमारे घर में और हम उनको खाना खिला दें, बस रहमत हो गई। तो हमेशा के लिए चलो उस दिन को तो रहमत हो गई आपके घर, अब अगले दिन क्या होगा? हमेशा की रहमत थोड़ी हो गई, इसका हमेशा का ताल्लुक होना चाहिए। तो ये रहमत है, देखो ये कैसे रहमत बनता है। आपको ये दुनिया की जो गुमराहियां इससे महफूज रखेगा, आपके ईमान को तरोताजा करेगा, आपका ईमान फ्लरिश करेगा, आपका ईमान मजबूत हो जाए होता जाएगा इस रहमत की वजह से। क्योंकि ईमान के लुटेरे बहुत हैं, ईमान चला जाता है ना इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका ईमान गुम हो गया, लूज कर देता है ईमान, या ईमान इतना कमजोर हो जाता है कि इंसान बात बात के ऊपर फिसलने लगता है। तो ईमान की मजबूती कैसे होगी? इस रहमत के जरिए। गुमराहियों से निजात कैसे मिलेगी? हर तरफ गुमराहियों के अंधेरे छा रहे हैं, इनसे कैसे महफूज रहेंगे? इसके जरिए, इस कुरान की जो रहमत है। जिंदगी के फितनों से आप कैसे महफूज रहेंगे? सूरह कहफ पढ़ के ना, तो सूरह कहफ कहाँ है? कुरान में। तो ये कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने ये हमें दे दिया। आसमानी आफतों से हिफाजत, उससे हिफाजत के लिए मसलन है आंधियां, तूफान है, बीमारियां, जलजले, सैलाब, कहत, ये सब चीजें जो है उनसे भी मौज़तैन पढ़ने की हिदायत की गई कि मौज़तैन पढ़ो। ये क्योंकि एक दफा हजरत उकबा फरमाते हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे, अचानक हमें जबरदस्त तारीकी और आंधी ने आ लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगनी शुरू कर दी और फरमाया मौज़तैन के जरिए अल्लाह की पनाह मांगो। किसी पनाह मांगने के लिए इन दो सूरतों से बेहतर कोई सूरत नहीं। तो यानी ऐसी कोई मुसीबत हो तो फिर भी मौज़तैन पढ़ें, और कोई मुसीबतें आए तो फिर भी ये कुरान की तरफ आए, ये आपको जो तसल्ली तशफी देगा तब पता चलेगा ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है हमारे पास। इसे बड़ी तसल्ली नहीं कोई दे सकता। और अल्लाह ताला इसी के जरिए गलबा अता फरमाएगा, अरूज देगा दुनिया में भी। ये मैं आप दुनिया की आपको बातें बता रही हूँ, दुनिया के फायदे बता रही हूँ, क्योंकि हम ज्यादा हिर्स दुनिया के फायदों की रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए लोगों को अरूज अता फरमाता और बाज लोगों को जलील और रुस्वा कर देता है। इसी के जरिए अरूज मिलता है, जो उसको छोड़ देगा जलील हो जाएगा। तो फिर कौन नहीं चाहता कि उसको इज्जतें मिले दुनिया की, अरूज मिले दुनिया का, गलबा मिले दुनिया का? तो फिर इसकी तरफ आओ। रिज्क भी इसी किताब के जरिए मिलता है। आप अल्लाह ताला का इरशाद नहीं है कि अगर इन्होंने तौरात को और इंजील को और उनके रब की तरफ से जो भी तालीम आई सूरह माईदा में हमने पढ़ा था उसको कायम किया होता तो इन पर ऊपर से भी रिज्क बरसता, नीचे से भी। फिर इसी तरह रात को जो फितने हैं उनसे बचने के लिए आयतल कुर्सी पढ़ना, वो भी तो इस कुरान में ही है। फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा आपके लिए, सुबह तक हिफाजत करेगा। हाजतें आपने जो दुनिया की हाजतें हैं वो पूरी करने के लिए जो दुआएं हैं वो इस कुरान में है। खैर और बरकत अगर आपको चाहिए तो खैर और बरकत इस कुरान के जरिए आपको मिलती है। और अगर आप अपने घर के अंदर झगड़े हैं, फसाद हैं, या कोई शयातीन का आपको लगता है कि बसेरा है, सूरह बकरा पढ़ें, उसका पढ़ना भी शयातीन को निकाल देता है। और सूरह बकरा का पढ़ना बाय से बरकत है और उसको छोड़ना बाय से हसरत है, ये मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह मुसीबतें हैं, कोई भी गम परेशानियां, उनसे भी निजात देती है ये कुरान निजात देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात कि जो शख्स अल्लाह से कुरान अल्लाह ताला से कुरान को कि इस कुरान के जरिए कुरान मजीद को आंखों का नूर और दिल का सुरूर बनाने और रंज और गम दूर करने की दरख्वास्त करेगा, अल्लाह ताला उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून उसको अता फरमा देंगे। और उसके रंज और गम को दूर फरमा दे। यानी जो अल्लाह से दुआ करेगा ना कि अल्लाह इस कुरान के जरिए मेरा गम दूर कर दे, अल्लाह ताला उसके लिए कर देगा। ये तो पनाहगाह है, जैसे किसी ने हमें एक महफूज पनाहगाह में ले लिया कि जिंदगी के तपते सहरा में हमें जैसे ठंडा साया मिल गया, घना साया मिल गया। ये रहमत ही रहमत है, और इसको छोड़ना महरूमी है। और बरजख में भी जब फरिश्ते आके पूछेंगे कि जो है ना ये सवालों के तुम्हें जवाब आते हैं, जब इंसान सवालों के जवाब देगा सही सही सब जवाब दे देगा, तो पूछेंगे तुम्हें कैसे पता है इनके जवाब। वो कहेगा मुझे, मैं कुरान पढ़ता था, मैं कुरान पे ईमान लाया था, मैंने उसकी तस्दीक की, उसकी तिलावत की, उससे मुझे आए हैं ये। तो फिर ज़ाहिर है वो उसके लिए तो फिर वो खुशी का सामान होगा, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी कामयाब हो गया। और फिर इसी में, इसी कुरान में सूरह मुल्क है जो अजाब कब्र से निजात देती, वो भी तो इसी में है। और जब इंसान को कब्र में अजाब होने लगता है तो एक जो फरिश्ता आता है अजाब देने के लिए, तो तिलावत कुरान जो है वो उस फरिश्ते को हटा देता है। ये नहीं, ये कुरान पढ़ा करता था, फिर ये कुरान सिफारशी बनेगा, क्यामत के दिन खड़ा हो जाएगा, याला इसको माफ कर दे, उसके हक में लड़ेगा, इस बंदे के हक में जो उसको पढ़ा करता था, जो इसके साथ ताल्लुक रखता था, जो इसको अपनी जिंदगी में अमल में लेकर आया था। यानी मैं तो पूरी इसके ऊपर क्लास करते रहे तो और बातें आती रहेंगी। तो इतनी बड़ी ये रहमत है, मुकर्रब फरिश्तों की रफाकत है इसके जरिए। कुरान की जो तिलावत करने का माहिर है ना कारी, वो नेक और मुअज्जब फरिश्तों के साथ होगा क्यामत के दिन। और दर्जे बुलंद इससे होते हैं कि कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा जन्नत के दर्जे। उसके वालदैन की भी तकरीम होगी, वालदैन को भी इज्जत के लिबास कीमती पहनाए जाएंगे कि वे इसका बच्चा जो था वो कुरान पढ़ा करता था। कितनी सारी सआदतें हैं, फिर इसको छोड़ते हो, फिर इसके जरिए कुरान पढ़ने वाले की मगफरत और बख्शिश के अलावा अल्लाह ताला इसकी वजह से इज्जत का लिबास उसको पहनाएंगे, और उसको ये कुरान सिफारिश करेगा अल्लाह ताला के सामने कि या अल्लाह इससे राजी हो जा, और ये कुरान का मुतालबा कबूल किया जाएगा। कुरान वो सिफारशी है जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो देखिए ना, सिफारशी भी अब जैसे हम किसी की सिफारिश करने चल पड़े सदर और वजीर आजम के पास, तो हमारी कौन सुनेगा? अब देखिए ऐसे भी सिफारशी होते हैं। तो कुरान जो सिफारशी है ना, वो इतना मुअज्जज़ है कि इसकी सिफारिश वहां पे एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट नहीं होगी। तो कुरान की डिफरेंट सूरतों के बारे में आता है, स्पेशली उनके बारे में भी। वैसे तो पूरा कुरान ही सिफारिश करेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सूरतें भी आती हैं कि जैसे सूरह मुल्क है, सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान। ये तो बाकायदा इनके बारे में आता है कि ये झगड़ेंगे कि अल्लाह इसको माफ कर दे और इज्जत का ताज पहनाया जाएगा उस दिन, उसको लिबास भी पहनाया जाएगा, ताज भी पहनाया जाएगा। क्या बड़ा ऑनर है इसकी वजह से। तो ये तो रहमत ही रहमत है। समझ नहीं आती फिर लोगों को इसी से क्यों इतनी यानी इसको फालतू समझते हैं, इसको बेकार समझते हैं, या इसको समझते हैं कि बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमारी ज़िंदगी में, और बार बार पूछते हैं इसको पढ़ना फ़र्ज़ है, ये कोई सीखना फ़र्ज़ है। तो फिर आप बता दें कि रहमत पाना फ़र्ज़ है, नहीं तो छोड़ दें, रहमत की क्या ज़रूरत है? शिफा ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, शिफा के बगैर ही पहले वो तो हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए हो, लेकिन जिस चीज़ में शिफा और रहमत है उसी को छोड़ के बैठे हैं। फिर शिकायत करते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, ऐसे क्यों हो रहा है, और अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। जब हम यहाँ से हमारी आँख बंद होगी और उधर की आँख खुलेगी ना, तब असल पता चलेगा ये कुरान की वैल्यू क्या थी, जिसको हमने ऐसे ही बस फालतू चीज़ समझा था कि जब सारे धंधे पूरे हो जाए हमारे, फिर आए हाय कुरान भी करना था, और इसकी भी क्लास, और आए इसके भी टेस्ट, और आए इसके भी काम। ये जिसको हमने बोझ समझा हुआ था वो बोझ नहीं, जिसको हमने मुशक्कत समझा हुआ था वो मुशक्कत नहीं थी, वो तो सरासर रहमत। वो तो इसकी तो रहमतें ख़त्म ही नहीं होती, ये तो जन्नत तक पहुंचा के फिर दम लेगा, ये वो कलाम है। तो अल्लाह ने तो आपको इतनी बड़ी चीज़ दे दी, हम इसकी कदर नहीं करते, ये हमें अल्लाह ने दे क्या दिया ये हमें पता ही नहीं है। ला करे कि दुनिया में ही पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है जो हमारे पास है, इससे पहले कि आखरत में आंख खुले तो फिर वापस आके कुछ कर नहीं सकेंगे। वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और नहीं ज़्यादा होता ज़ालिमों को मगर खसारा। यानी आप ये देख लें कि ये कुरान है तो शिफा और रहमत, लेकिन जो इसको छोड़ेगा, जो ये कुरान जालिमों की निजासत में मजीद इजाफा कर देगा, उनके जुल्म में मजीद, उनके कुफर में मजीद इजाफा। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसी के जरिए कुछ लोग बुलंद होते हैं, इसी के लिए जरिए गुमराह भी हो जाते हैं। वो इसी को पकड़ के इसी में से शोशे निकालते हैं, इसी में से बातें निकालते हैं। मुनाफिकीन जैसे बैठ जाते थे कि भाई हम सुने जरा कि कोई बात ऐसी निकले तो हम वो जाके भाई देखा देखा ये तो ऐसे कह रहे हैं। कुछ लोग कुरान की तरफ ये भी आते हैं, कुरान उनके लिए वैसे बोझ है सुनना, लेकिन सिर्फ शोशे निकालने के लिए उनके जुल्म और बढ़ जाता है। वाइदा अनअमना अलल इंसानी आरदा वना बिजानिबी, और जब हम इनाम करते हैं इंसान पर, यानी उसको नेमतें देते हैं, नेमतों में सारी नेमतें आ गई, जिस्मानी सेहत है, इल्म है, औलाद है, माल है, जितनी भी नेमतें, खुशियाँ हैं, आसाइशें हैं, तो क्या होता है, आरदा, वो मुँह मोड़ लेता है। वना आ भी जानी भी, और दूर होता है अपने पहलू के साथ। आपने देखा होगा इल्ला माशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह, ज़्यादातर लोग जो बहुत दौलतमंद हो जाते हैं, नेमतों की फरामानी हो जाती है, किसी किस्म का उनको कोई चीज़ की मोहताजी नहीं होती, तो उसके बाद उनका एटीट्यूड क्या रहता है, वो ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह से भी बेनियाज हो गए, उनको अल्लाह की भी नहीं ज़रूरत, और फिर वो ऐसे बन के बैठ जाते हैं कि बस अल्लाह से एराज, मुंह मोड़ना। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देख लें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, इतनी नेमतों में मगर अल्लाह याद नहीं है। तो अल्लाह की ज़रूरत क्या है हमें, हमारे पास सब कुछ तो है। यानी वो समझते हैं कि अल्लाह की ज़रूरत तब होती है, यानी मैंने किसी से वाकई मुँह से बोलते हुए सुना कि यानी वो ऐसा बताते हैं हमें क्या ज़रूरत है, ये तो यानी ये काम तो वो लोग करें जो कि इस तरह उनको कोई ज़रूरत है, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यानी उनको ये होता है कि कोई ज़रूरत हुई तो अल्लाह के पास जाएंगे, जब हमारी ज़रूरत ही नहीं तो फिर क्या, हम तो खुद कफील हैं। और जितना दौलत में बढ़ते जाते हैं, इसीलिए दौलत को फितना कहा गया, उतना ही अल्लाह भूलता जाता है। और ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने कुरान की दी, लेकिन उससे भी मुँह मोड़ लेते हैं, दूर होते हैं, बच बच के चलते हैं, कहीं हमें इधर को बुला ना लें, कहीं हमें कह ना दें कि आ जाओ कुरान सीख लो। अल्लाह अकबर, बजाय इस नेमत को आगे होके पकड़ते, इसका शुक्र अदा करते, वो एराज करते हैं। वह इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और जब पहुंचता उसको शर तो मायूस हो जाता। होना क्या चाहिए, नेमत मिलने के बाद शुक्रगुजारी, अगर कोई शर मिलता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्र। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नेमत मिलने के बाद और वो ज़्यादा खुल के बुराइयों के अंदर और खुदा फरामोशी में आगे निकल जाते हैं, और शर जब आता है, कोई मुसीबत आ जाती, कहते हैं अब तो हमारे कभी दिन ठीक ही नहीं होने, अब नहीं कभी सेहत मिलनी, अब नहीं कभी सही होना, अब तो बस कुछ नहीं होगा, ये अल्लाह को पसंद नहीं, डिप्रेशन में चले गए, इसमें चले गए, बस दुआ भी नहीं मांगनी, नहीं कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर क्या फ़ायदा, अब किसी कोई नहीं मेरे हालात बदलेंगे, ये मायूसी है। और अल्लाह ताला को ये तर्ज अमल नहीं पसंद अपने बंदे से। कुल कह दीजिए, कुल या अमल वाला शाकिलती ही, सब जो भी अमल करते हैं अपने शाकले के मुताबिक अमल करते हैं। शाकला क्या है, शाकले अगर हम थोड़े से लफ्ज में बयान करें, एक लफ्ज में बयान करना हो तो पर्सनैलिटी, जो इंसान की पर्सनैलिटी है, यानी एक तो आपकी शक्ल सूरत होती है ना, जो आपकी फिजिकल आपकी शक्ल है, बाय फेस है, एक आपकी पर्सनैलिटी है जिसके अंदर आप क्या क्या आ जाता है, यानी आपकी जो आदतें हैं, आपके जो तरीके हैं, आपकी जो नियतें हैं, जो आपके एक तबीयत जिसको कहते हैं, एक तबीयत बन चुकी है आपकी कि आपको वही काम अच्छे लगते हैं, जो आपका मिजाज बन चुका है, तो हर एक इंसान उसके मुताबिक काम करता है, जैसा उसका मिजाज है, जैसे उसकी तबीयत है। और ये कैसे डिवेलप होता है, ये इंसान का माहौल का इसमें रोल होता है। कहते ना, नहीं जो फलां का बच्चा है तो जाहिर है वो ऐसा ही होगा, इंसान के जीन्स का भी असर होता है उसके अंदर, जीन्स का असर भी आता है। कि वही चीज़ें, यानी वही तौर तरीके, वही चीज़ें जो उसने हमेशा से अपने माँ बाप को देखी, पैदा ही हुआ तो उस वक़्त से ही उसके थे, तो वो भी उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, और बाहर का माहौल भी असरअंदाज होता है। तो जिस माहौल में, जिन हालात में, जिन माँ बाप के पास उसने परवरिश पाई होती है, वैसा उसका जैसे कहने जेहन बनता जाता है। तो जब इंसान का जेहन ऐसा बन जाता है तो वो फिर उसी तरह अमल करता है। तो हर कोई अपने शाकले के मुताबिक अमल करता है। यानी अब आप देखें कि मसलन है, कोई एक बंदा बखील है, बुखल ही उसने सीखा और उसकी तबीयत ही अब ऐसी हो गई, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अब वो अमल बहुत भी कर लेगा तो उसी के इर्द गिर्द करेगा, अपने मिजाज से बाहर नहीं जाएगा। और इसी इसका माना ये भी है कि हम शक्ल का भी लिया गया, यानी फिर आयत का मतलब क्या होगा कि हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक आदमी से मानूस होता है, अमल करता है अपने शाकले के मुताबिक, यानी अपने मिजाज के मुताबिक आदमी के साथ मानूस हो जाता है। नेक आदमी नेक के साथ, शर शरीर के साथ मानूस होता है, उसके तरीके के मुताबिक ही चलता है। तो इंसान की, यानी जो अमल होगा वो उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक होगा। पर्सनैलिटी फिर बहुत मुश्किल से चेंज होती है, बहुत ही मुश्किल से, बहुत मुश्किल से इंसान, और वो किस तरह से बनती है, सोबतों के साथ, माहौल के साथ, हालात के साथ, किन चीज़ों में इंसान रहा है। आपने देखा है बाज़ लोग ऐसे हालात के अंदर रहे होते हैं इंतहाई वो चिड़चिड़े, और उनका मिजाज ही ऐसा हो चुका होता है, वो उसको हेल्प नहीं कर सकते, हर वक्त वो उसी उसके अंदर रहते हैं, कि वो उसी के अंदर वो हमेशा से मतलब पले बड़े, वो यही उनकी सोच बन गई, ये उनका मिजाज, उनकी तबीयत, नेचर जिसको कह देते हैं, नेचर के मुताबिक काम करता है। हाँ, मेरे ख्याल नेचर ज़्यादा बेहतर वर्ड है, कि अपनी नेचर के मुताबिक इंसान काम करता है। नेचर कैसे बनती है? हमेशा माँ बाप के पैदा होने से किसी घर में नेचर नहीं बन जाते, माहौल भी नेचर बनाता है। इसके मतलब है कि अच्छा माहौल इंसान को मिलना चाहिए ताकि उसकी अच्छी नेचर बने। फरब्बुकुम आलमु बिमन हुआ अहदा सबीला, और तुम्हारा रब ज़्यादा जानता है, जो ज़्यादा है हिदायत की रास्ते, हिदायत के हवाले से जो ज़्यादा रास्ते पर है। हर इंसान की क्या सोच है, क्या हालात हैं, क्या रुझानात हैं, क्या माहौल है, ये तो सब चीज़ें हैं, ठीक है, उसके साथ है, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि कौन किस हालात के अंदर किस चीज़ के ऊपर चला, वो क्या कि किस रास्ते के ऊपर, कौन सा रास्ता, किसका रास्ता ज्यादा सीधा है उनके अंदर। वयसअलूनक अनिर रूह, और वो सवाल करते हैं आपसे रूह के बारे में। ये कौन सवाल कर रहे थे? मुशरिकीन मक्का यहूद के पास गए, उन्होंने सोचा कि हम यहूद इल्म वाले हैं, किताब वाले हैं, क्यों ना जाके इनसे पूछा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल किए जाएँ, ताकि उन सवालों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लिया जाए, क्योंकि उनको इल्म है तो वो बताएंगे फिर। तो उन्होंने वो तीन सवाल बताए थे, रूह के बारे में पूछना, वो ज़ुल्करनैन का पूछा था, और साहबे कहफ का पूछा था, केव वालों का किस्सा क्या है, और वो ट्रैवलर जो गया इधर से उधर, मशरिक़ से मगरिब उसने ट्रैवल किया, उसका क्या किस्सा है। तो वो बाद में तो आता है जो कि उनके उनके जवाब तो सूरह कहफ में आ गया, यहाँ पे रूह का जवाब आया कि वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुले रूह मिन अमरी रब्बी, अल्लाह ताला ने मुख्तसर जवाब दिया इसका, कह दिए रूह अल्लाह के हुक्म से है। अच्छा, जो जो आलम अमर की बातें हैं ना, यानी जो गैब की बातें हैं, आलम गैब की बातें हैं, वो हमारी समझ से बाहर हैं, हमारी अक्ल से बाहर हैं, हमें वही बातें बताई गई हैं कुरान में भी जो कि हमें समझ आ सके। जो हमें बातें समझ ही नहीं आ सकती, हमारी अकल की कैपेसिटी उतनी नहीं है, ये तो आप मानते हैं ना, हमारी अकल महदूद है। तो जब हमारी अकल महदूद है, इसमें वो बातें नहीं आ सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने उन बातों को नहीं बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अम्रे रब्बी से है, तुम्हें कैसे समझाया जाए, बताया भी जाए तो हमें समझ ही नहीं आ सकती, तो इसलिए उन बातों को नहीं बताया गया। अब इसमें कसूर हमारी अपनी अकल का है, क्योंकि वो छोटी है, इसमें रूह का मामला नहीं। ये जो रूह है, क्या चीज़ है, ये जो आती है अंदर जिस्म में चली जाती है, आपको पता है आज तक साइंस नहीं इसको बता सकी क्या चीज़ है वो इंसान के अंदर, जो आती है तो जिंदा है, निकल जाती है तो मुर्दा है। हाँ, वो क्या चीज है, तो क्या जवाब है इसका? हालांकि बिलीव करते हैं सब कि सोल है इंसान का, वो सोल क्या चीज है, ये हमारी अकल से बियॉन्ड है, वो अल्लाह ने जो रूह फूंकी थी वो क्या चीज है, ये हम नहीं समझ सकते। तो जो बातें नहीं समझ सकते ना, इससे पता चलता है कि उन बातों की खोज के अंदर नहीं लगना चाहिए जो हमारी अकल की कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी से ऊपर हो। जरूरी नहीं कि हर बात हमारी समझ में आ जाए, बाद लोग इस चीज के इतने पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि हमसे बड़े PhD और इंटेलेक्ट कौन हो सकते हैं, हमें ना समझ आएगी तो क्या बताएं हमें, हमें समझ आ जाएगी, ऐसे नहीं है। इंसान जितना भी अकलमंद हो जाए महदूद है उसकी अकल। फरमाया वमा ऊती तो मिनल इल्मी इल्ला कलीला, इंसान तुझे तो अल्लाह ने बहुत थोड़ा इल्म दिया, तू इसके ऊपर ही चुप करके नहीं बैठता, ये तो हाल ही है, उसके ऊपर ही भुदकता फिरता है, उसके ऊपर ही बड़े जोम में है मैं क्या चीज बन गया। बाज लोग ऐसे भी हैं वो बड़ी बड़ी डिग्रियां और उनके पास बड़े बड़े दुनिया के उलूम हैं, तो आज वो अल्लाह को ही क्वेश्चन करने शुरू हो गए जब उनको समझाते हैं भाई नहीं ऐसी बात नहीं है ये ऐसा, तो वो कहते हैं कि तो आप क्या बात करते हैं, हमें ना बात समझ आएगी, हमें ना हिकमतें समझ आएंगी, क्यों अल्लाह ने इस तरह लोगों को रखा है, किसी को अंधा बनाया, किसी को बहरा, किसी को गूंगा, क्यों इस तरह बनाया, और कोई लोग मर रहे हैं वहां पे, और इस तरह ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया के अंदर। अब आप हमें समझाएं, क्यों नहीं हमें समझ क्यों नहीं आएगी, हमें समझाया जाए ये बात। तो जितने कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया का इल्म बहुत ले लेते हैं, फिर उनकी अकलें इस तरह मारी जाती हैं। अल्लाह ताला तो फरमाता है तुम्हें इल्म ही बहुत थोड़ा दिया गया है, तुम्हारी तो अकल बहुत थोड़ी है, उसके मुताबिक इल्म है, हम कहाँ जान सकते हैं। अभी तो हम ये सितारों सैयारों इनसे ही बियॉन्ड नहीं जा सके, दुनिया का ही नहीं इलूम सारे पा सके, कितनी बीमारी दुनिया में है जिनका हमें नहीं पता कि इनका इलाज क्या है, कितनी और मखलूक है जो इस दुनिया के अंदर ही बस्ती है हमें पता ही नहीं है, आए दिन वो डिस्कवरीज करते हैं कि ये भी अब मिल गया, ये भी मिल गया, ये पता चल गया। आप वो तो ये हाल है आपका कि जो है ना आपका जहाज समंदर के अंदर गिर जाता है और आप ढूंढते फिरते हैं और सैटेलाइटें ढूंढ रही हैं, और पता ही नहीं है कि वो इतना बड़ा जहाज, इतने ज्यादा कई 100 मुसाफिर उसमें बैठे हैं, वो कोई चींटी थोड़ी है, वो इतना बड़ा जहाज गया किधर। तो इंसान कुछ सोच और जान और ये मान ले कि तेरा इल्म कलील है, मानता नहीं है, कहता मैं बड़ा इल्म वाला हूँ, अल्लाह ताला फरमाते तुझे तो बड़ा थोड़ा दिया गया, तो मान जाओ हमारे पास थोड़ा है और हम में से सबके पास थोड़ा है, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, मान जाओ इस बात को खुदा के लिए। जिस दिन सोचते ना बहुत है मेरे पास इल्म, उसी दिन तकब्बुर आ जाता है, और इंसान सोचे तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हर दिन अल्लाह ताला उसको दिखाता है कि तुम कितने जाहिल हो। वला इन शिना नज़हबन्ना बिल्लज़ी औहैना इलैका सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला इन शिना, और अलबत्ता अगर हम चाहते ना, ला नज़हबन्ना बिल्लज़ी औहैना इलैका, तो हम जरूर ले जाते उस चीज को जो वही किया हमने आपकी तरफ। क्या वही किया? कुरान। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अगर हम चाहते तो हम इस कुरान को ले जाते। तुम ढूंढते रह जाते कुरान के, खोलते तो अल्फाज गायब, अकलों में अपनी जहनों को झंझोड़ते तो हिफ्स गायब, ना किताब में मिलता ना अकलों हाफजों से भी अल्लाह ताला उठा ले, तो क्या करोगे? ला सकते हो फिर तुम, अल्लाह तजिदुल बिही अलैना वकीला, फिर तुम कहीं से वापस नहीं ला सकते, कहीं से वापस नहीं ला सकते, कोई तुम्हारा वकील नहीं होगा जो अल्लाह को सू कर दे के क्यों तूने उठाया और किधर गया कुरान और लेकर आओ कुरान, और कोई जोर चला सके या कोई कहीं से ला सके, कहीं से बना सके, हम चाहें तो ये वापस ले लें। और एक वक्त वो आएगा जब कुरान के अल्फाज उठा लिए जाएंगे कयामत के करीब कागजों से जहनों से। इंसान को मिलने वाली बहुत बड़ी नेमत है, मगर हम चूंकि ये समझते हैं हमारे पास ही तो पड़ा हुआ, चाहे अंधे बन के रहें तो ये सोचते हैं घर के शेल्फ में ही तो पड़ा हुआ, ये कौन सा कहीं चला गया। तो अगर आपके घर के शेल्फ में पड़ा हुआ भी है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला, आपके सीने में नहीं आया इसका इल्म, तो आपके लिए एज गुड एज इट्स नॉट देयर, आपके लिए तो ऐसे ही है कि जैसे है ही नहीं। अब तसव्वुर में लाएं दुनिया से कुरान उठ जाए अगर, तो क्या होगा? अंधेरा, जिहालत का ऐसा अंधेरा कि जो किसी चीज से दूर नहीं हो सकेगा। जैसे सूरज गरूब हो जाए और कभी ना निकले तो कितना अंधेरा हो जाए। इल्ला रहमत मिन रब्बिक, मगर सिर्फ तेरी रहमत, तेरे रब की तरफ से रहमत हो तो फिर ही वापस मिल सकता है। अगर अल्लाह उठा ले तो वापस कोई नहीं ला के दे सकता तुम्हें, अगर सिवाय इसके कि अल्लाह की रहमत हो। एक ये माना हो गया, और दूसरा माना क्या है कि तेरे रब की रहमत ही है कि उसने ऐसा नहीं किया, इसको उठा नहीं लिया। ना जितनी इंसानों की ना शुक्रिया है, ये तो इतनी प्यारी चीज़ अल्लाह ताला ने दे दी, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे दी। मैंने आपको अभी तो चंद एक बातें बताई हैं इसकी रहमत की, इसकी रहमतों अहाता किए हुए है, इतनी रहमत है इसकी। जिस घर में आ जाता है उस घर में रहमतें हो जाती हैं, जिस दिल में आ जाता है वो दिल सुकून पा जाता है, जिस मुल्क का निज़ाम इस कुरान के थ्रू हो जाएगा वो मुल्क तरक्कियां कर जाते हैं, वो मुल्क दुनिया पे छा जाते हैं। देखो कैसे खिलाफतें छाई थी, कैसे उनके अदल और इंसाफ के निज़ाम थे, देखा। तो जिस माश में आ जाता है वो माश तरक्की करने लगती है, उसमें अमीर और गरीब के ऐसे नहीं रहते जैसे कि आज की दुनिया के अंदर, अगर कोई सूद खा खा के इतने हो गए और कोई बेचारे बिल्कुल पिस रहे हैं, उसमें अदल और इंसाफ आ जाता है। जिस अदालतों के अंदर इसको नाफिज किया जाए वो अदालतें इंसाफ वाली हो जाती हैं। तो ये जो जिधर जाएगा रहमत है, जिधर जाएगा। आप अपने घरों के अंदर इसको जिंदा कर लें तो वो घर देखो खुशियों का गहवारा बन जाएंगे, अपनी अजदवाजी जिंदगी में इसको ले आए उसमें खुशियां मिलने लगेंगी। तो ये तो रहमत ही रहमत है, और ये तो तेरे रब की रहमत है कि उसने इसको उठाया नहीं है। इन्ना फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा, और बेशक ये फजल ऐसा है, काना अलैका तुझ पे ए नबी, आपके ऊपर ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। आप देख लें ये किस चीज को कहा जा रहा है फजल, कि आपको कुरान मिल गया ए नबी, आपको बहुत बड़ा फजल अल्लाह ने अता फरमा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अगर हम फजल हम किसको समझते हैं, दौलत को, घरों को और हालात चीज़ों लग्जरीज को, कि बड़ा आज़ा मिन फ़दली रब्बी, ये बड़ा अल्लाह का फ़जल है कि मैं इतना बड़ा घर मुझे मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ना बड़ा घर था तो ना माल दौलत था, और हालात भी ऐसे थे कि गम पे गम के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तो आपके ऊपर बहुत बड़ा फ़जल किया कुरान दे के। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझे अगर आपको कुरान की नेमत मिल रही है, और इस चीज़ की कदरदानी करें। एक होता है चीज को कदर के साथ लेना और एक है सर सर से उतारने वाला। जब आप कदरदानी के साथ इस कुरान को सीखेंगी ना तो आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा, ये इस तरह शिकायती रवैया नहीं रहेगा, फिर बोरियत नहीं लगेगी, मुसीबत नहीं लगेगा, मुशक्कत नहीं लगेगा, हाय ये भी काम करना है ऐसे नहीं लगेगा, फिर शौक होगा, फिर आप इसको मिस करेंगे। अगर एक दिन नहीं किए पढ़ा तो मिस होगा, ये हाय कुरान की याद आ रही है, आज के दिन कुरान नहीं मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ। तो ये वो चीज़ है, इतना बड़ा फ़जल है जिसको रब कह दे ये फ़जल है मेरा बहुत बड़ा तेरे ऊपर, वो कितना बड़ा फ़जल होगा। तो आप भी अपने ऊपर इसको फ़जल समझें, अगर अल्लाह आपके चीने आपके सीने को चुन लेता है इसके लिए तो इसको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी समझें। अल्लाह तूने मुझे चुन लिया इसके लिए, वो जिसके लिए तूने अपने प्यारे नबी के सीने को चुना था, अल्लाह तूने मुझे उसके लिए चुन लिया। और कभी ना ये सोचें कि बस हाँ ये मैं बस कब खत्म होगा और कितने साल रह गए और कितने पारे रह गए और रोज देख रहे हैं हाय कितना पता नहीं इसमें अरसा लग जाए, बस खत्म करना आपकी मंजिल है और बस ये आपका मकसद है, या इसकी रहमतें समेटते रहना और इसकी शिफा हासिल करते रहना जितनी सांसें हैं उस वक्त तक, ये मकसद है। देखें अपने मकसद, बोल इन जमातिल इंसुअल जिन, कह दीजिए अलबत्ता अगर जमा हो जाए इंसान और जिन, सारे जमा कर लो, अला अन यातू बिमिस्ली हादल कुरआन, के ले आए इस कुरान की मानिंद, कुछ चीज बना के ले आए, कुछ ले आए, कोई सूरत कोई आयत ले आए। ये कुरान अगेन जो चैलेंज कर रहा है, ला या तू ना भी मिसली, नहीं ला सकते इसकी तरह। जो लोग ये कहते हैं, जो किसी ने कहा कि देखें गैर मुस्लिम का क्वेश्चन था, उन्होंने कहा भी देखें हम ये कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह ही का कलाम है, अल्लाह ही का कलाम है, ये कैसे हमारे यकीन हो, ये तो आपके कहने की बात है ना, तो हम आपकी बात को तो नहीं यकीन करते, तो ठीक है हमारी बात को ना यकीन करो, इस चैलेंज का जवाब दे दो। ये जबरदस्त चैलेंज है, ऐसा कलाम बना के फिर तुम भी ले आओ, क्योंकि अगर ये इंसानी कलाम है तो फिर तो सारे बना के ला सकते हैं, चलो नालायक ना लाए, कोई लायक ही होगा जो ले आए, चलो एक नहीं तुम सारे ही मिल जाओ, मगर जैसे इसके अल्फाज कैसे उनका चुनाव है, जैसे वो अल्फाज माने देते हैं, जैसे उनमें फसाहत और बलागत है, जैसे उसके फायदे और असरात हैं, और जैसे उनका रिदम आता है, वो उस तरह से कुछ ला के दिखाओ, ला के दिखाओ इसकी मिसल, तुम नहीं ला सकते। अल्लाह ताला ने खुद ही इसका जवाब दे दिया, कभी ला ही नहीं सकते, ये कुरान का दावा है, कोई ला के दिखाए। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, चाहे तुम में से बाज के मददगार ही बन जाए जिन और इंस, इंसानों तुमसे नहीं भी होता, जिन्हों को भी साथ मिला लो, सारे सर जोड़ के बैठ जाओ फिर बनाओ। आज दुनिया में ना कोई ऐसा दावा नहीं वैसे कर सकता, कोई कोई किताब लिखे, कोई कोई बड़ा कारनामा करे, फिर उसके बाद चैलेंज करे मेरा रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाए, उसको पता है मेरा रिकॉर्ड तो टूट ही जाना है, आज मैंने कुछ बड़ा कारनामा किया, कल को कोई और मेरे से बढ़ के आ जाएगा मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन ये वो रब भी है जो ऐसा चैलेंज दे सकता है कि वो जानता है कि कोई नहीं ला सकता इसकी मिसल, कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, वरना कोई ऑथर बताएं या कोई भी किसी चीज़ फील्ड में भी किसी ने कोई ऐसा दावा किया हो कि मेरे रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाओ, इससे ज़्यादा आगे बढ़ के दिखाओ जो कुरान दावा करता है। और ये चीज़ों से ना तशहीर किया करें, ना इस चीज़ को बहुत उछालें कि भाई जो हाय कुरान आ गया, यहूदियों ने कुरान बना लिया है, ये हो गया, आप ईमेलों पे ईमेल भेज रहे, उनसे ज़्यादा तो आपने पब्लिसिटी कर दी, नहीं इन वेबसाइटों पे ना जाना, वो आप वेबसाइटें ज़रूर ही बच्चे खोल के देखेंगे कि इनमें है क्या, क्या ज़रूरत है, आप कुरान को सीखें ना, उन वेबसाइटों को छोड़ें, आप कुरान को सीख लें, जब कुरान को सीख लेंगे ना आपको खुद इसकी पहचान हो जाएगी, आपको खुद पता होगा कुरान क्या है, खुद ही आप हक और बातिल देखें, आज क्या पता चल गया, हक आ गया तो बातिल तो वहां पे खड़ा ही नहीं रह सकता, खुद पहचान होगी आपको कि ये बातिल है, किसी के बताने की जरूरत ही नहीं होगी, ये तब जरूरतें पड़ती हैं जब हम खुद इतने बेगाने होते हैं, हमें अपने कुरान का ही नहीं पता, तो अब हर चीज किसी ने कह दिया ये कुरान है, कल को कोई नूरानी कायदा उठा के ला के दे दे और कहे ये कुरान है तो मान लेंगे उसको, मतलब आप खुद अपने कुरान की पहचान रखिए ना, आप वो जब खुद इसकी अजमत और इसके अल्फाज और इसकी फसाहत और बलागत का पता चलेगा आप नहीं धोखा खाएंगे, असल की पहचान जब आ जाए तो नकली चीज तो सामने पता चल जाती, उसको नहीं पहचान होती जिसको पता ही नहीं असल है क्या। वाला कसर नासी हादल कुरान मिन कुल्ली मसल, हर अलबत्ता तहकी फेर फेर के लाए हैं हम एक बात को, कई तरह से हमने बयान किया लोगों के लिए इस कुरान में, मिन कुल्ली मसल, लेकिन दोबारा यही बात आ गई, हर तरह की मिसालें दी हैं, क्यों अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह को कोई नऊज़ बिल्लाह कोई मोहताजी है इंसानों की, नहीं बल्कि क्या है, वो चाहता है कि तुम बच जाओ आग से और चाहता है तुम उसकी रहमत में आ जाओ, उसकी जन्नत में आ जाओ, उसने तरह तरह से मिसालें बयान की, लेकिन लोगों का हाल क्या है, फअबा अक्सरुन नास इल्ला कुफूरा, तो ना माने अक्सर लोग मगर इनकार करना, इनकार ही किया उन्होंने और नहीं मान के दिया उन्होंने, चाहे अल्लाह ताला ने किस किस तरह नहीं मिसालें बयान कर दी, इसका मतलब है अक्सरियत इनकार करेगी, तो आप उनसे मुतासिर ना हो कि वो उसने भी ये कह दिया, वो तो ये एतराज करता है, वो तो ये कहते हैं, हमारे फलां रिश्तेदार तो ऐसे कहते हैं, वो तो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक, और वो उनकी जो ऑब्जेक्शन हैं उनसे आप ना मुतासर हों, अल्लाह तआला तो कुरान में फरमाते हैं कोई ऐसे बेअकल भी होंगे कि जो इस कुरान की मिसालें देख के भी वो अपने आप को चाहे कितने ही बड़े आलिम फाजिल और वो कहते हों कि हम दुनिया के बड़े एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या एजुकेटेड है, वो तो जाहिल है, क्योंकि वो जो इस कुरान की इतनी मिसालें अल्लाह तआला ने कैसे कैसे नहीं मिसालें दी वो भी ना समझ सके, फिर भी इनकार करते रहे, फिर भी इस पर एतराज करें और फिर भी अल्लाह के अहकाम को ऑब्जेक्ट करें। अल्लाह ताला हमें ऐसे रवैयों से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें वो हिकमतें अता फरमाए कि हम ऐसे लोगों को बता सकें, समझा सकें अच्छे तरीके के साथ, और उनको इस कुरान की तरफ ला सकें। अल्लाह ताला हमारे सीनों को इस कुरान के लिए खोल दे, या अल्लाह इसको हमारे सीनों के लिए शिफा बना दे, हमारी जिंदगियों के लिए रहमत बना दे, अल्लाह हमारे लिए हिदायत का सामान बना दे, अल्लाह इसको हमारे लिए, हमारी इस दुनिया के लिए भी रहमत बनाना, हमारी बरजख के लिए और हमारी आखरत के लिए भी इसको हमारा सिफारशी बना देना। या अल्लाह हमारा और कुरान का साथ उस वक्त तक रहे जब तक कि जन्नत में ही हमें दाखिल ना करा दे, या अल्लाह वहाँ तक हमारे साथ रखना। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه سنه
يوم ندعو كل اناس بايمانهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ثم من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا